ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 तक पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह कल नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान शुरू। और शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में बस्ता मुक्त दिवस लागू करने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सवेरे धुंध की मोटी परत थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है, 401 से 450 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर त्योहारों से पहले दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाने के लिए भी कहा। श्री राय ने कहा कि वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार खराब हो रहा है, पराली जलने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर उन्होंने श्री यादव को पत्र लिखा है।
देखिए, हमारा प्रयास जारी है क्योंकि जिस तरह से एक यूआई का स्तर बढ़ रहा है और अभी आज से हवा का रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट हुआ है। अब जो सिचुएशन दिख रही है कि पराली जलने की घटनाएं और साथ ही साथ आगामी दिनों में दिवाली आने वाली है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं तीसरी बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि अब तुरंत बैठक बुला करके की तैयारी की जाए, उसके जो जरूरी परमिशंस की हैं उनको तेज किया जाए, जिससे कि इस बार कम से कम आर्टिफिशियल रेन का जो पायलट है वो दिल्ली में किया जा सके।
इस बीच दिल्ली में कार पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी ग्रैब 2 के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने शहर में पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। यह शुल्क NDMC द्वारा संचालित सभी पार्किंग स्थलों पर लागू होगा। NDMC ने कहा है कि बढ़ाया हुआ शुल्क ग्रैब 2 के लागू रहने तक जारी रहेगा। हालांकि मासिक पास धारकों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर आज वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। अपने दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में प्रदूषण के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को एक सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत खराब किया जा रहा है।
आज दिल्ली के पानी में यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है।
इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि वे 2025 के चुनाव से पहले यमुना की सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे और यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। श्री सचदेवा ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया कि वे कल सवेरे 10 बजे ITO यमुना छठ घाट पर आएं और अपना वादा पूरा करें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में प्रशासन ने धान की कटाई के बाद फसल के अवशेष यानी पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। फरीदाबाद जिले के उपायुक्त विक्रम सिंह ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी होती हैं जिसमें जानो माल का नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के वार्षिक ईंधन आयात में तत्काल कमी लाने पर बल दिया है। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष 22 लाख करोड़ रुपए के ईंधन का आयात होता है। नई दिल्ली में आज अभियांत्रिकी प्रबंधन पर 18वें विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रौद्योगिकी भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने आवश्यकता आधारित शोध और अनुसंधान पर बल दिया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली हवाई अड्डे को गुरुग्राम फरीदाबाद जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS के अंतर्गत मेट्रो लाइन बिछाने की योजना बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत गुरुग्राम के पालम विहार से हवाई अड्डे तक मेट्रो लाइन बिछाने की योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल नई दिल्ली में श्री मनोहर लाल से हरियाणा में मेट्रो के विस्तार और RRTS परियोजनाओं को लागू करने पर चर्चा के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह कल दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय मौसम विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों को 5 दिन का दैनिक मौसम पूर्वानुमान और प्रति घंटा मौसम पूर्वानुमान के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल का शुभारंभ करेंगे। इसका सीधा लाभ देश के किसानों और ग्रामीण समाज को मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के अंतर्गत इसे एक सशक्त आकार मिलेगा। एक रिपोर्ट।
सरकार की इस पहल से ऐसा पहली बार होगा जब स्थानीय मौसम पूर्वानुमान ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। मौसम पूर्वानुमान को पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मंच के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस कदम से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण आबादी मौसम तथा पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए तैयार हो सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और जमीनी स्तर पर आपदा तैयारियों को भी बढ़ावा देना है। इसका सीधा फायदा देश भर के किसानों और गांव में रहने वाले लोगों को होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की हरित पहल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटलीकरण के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। श्री राजनाथ सिंह विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य देंगे, जिसमें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी पहलों सहित राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना के महत्वपूर्ण योगदान पर संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी और वैज्ञानिक भाग लेंगे। अमरीका, रूस, इसराइल और श्रीलंका के वक्ता भी इस वार्ता में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। MyGov, नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और newsonair ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्र ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के माध्यम से ये बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई कॉमर्स माध्यम से 70 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। इसके अलावा चना 58 रुपए प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलो मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अलनीनो प्रभाव की वजह से चना दाल के आयात शुल्क हटा दिया था। अलनीनो प्रभाव के कारण पिछले वर्ष इसका उत्पादन कम हुआ था।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक खरीद कर रखा था, वो आज हम इस त्योहार के समय मार्केट में बेच रहे हैं। पल्सिस का इस बार भी MSP भी बढ़ा दिया है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन हो। बीज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ नाफेड और NCCF इसका एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, जो भी इसमें उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का वादा भी कर रहे हैं।
श्री जोशी ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। नेफेड और NCCF किसानों के साथ उनके पूरा उत्पाद की खरीद के लिए समझौते पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT की जानकारी दी जा रही है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी PKrishnamurthy ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के सभी 11 जिलों में 70 मोबाइल वैन तैनात की गई हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को मतदान प्रक्रिया और मशीनों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा रहा है। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया ये जागरूकता अभियान प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को EVM और VVPAT की मूल विशेषताओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना है। भारत की लग्जरी रेल पैलेस ऑन व्हील्स आज दिल्ली से अपनी 7 दिन की यात्रा पर रवाना हो गई है। ये रेल यात्रियों को यूनेस्को द्वारा प्रमाणित 8 विश्व धरोहरों की सैर कराएगी। इसमें ताजमहल भी शामिल है। 7 दिनों में ये रेल जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर होते हुए आगरा जाएगी। इस दौरान यात्रियों को भव्य किले, जंगल सफारी और मनमोहक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शहर की आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से त्योहार के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। श्री गोयल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वे दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दें। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में बस्ता मुक्त दिवस लागू करने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 1 महीने में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के तरीके को आसान बनाने के साथ ही उन्हें तनाव मुक्त माहौल प्रदान करना है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि बस्ता मुक्ति दिवस के दौरान स्कूल विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर ले जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अंतर्गत ये निर्देश जारी किए हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के प्रारूप पर चर्चा के लिए हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा दिखाना है। राजधानी दिल्ली में मौसम आज सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 तक पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह कल नई दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान शुरू। और शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में बस्ता मुक्त दिवस लागू करने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।